पृष्ठ संख्या 196, अध्याय 22, तबला वादन में निहित अन्य सौंदर्य के तत्व या लक्षण। रचना सौंदर्य। रचना यानि बंदिश। प्रयोगशील कला में बंदिश के तीन अंग महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, गढ़न, फॉर्म या आकार। दूसरा, साहित्य, मैटर या भाषा। तीसरा, प्रस्तुतीकरण का तंत्र, प्रोसेस या निकास। रचना कृति सौंदर्य। रचनाकार जब एकाध बंदिश बनाता है, तब यद्यपि वह तबले के उत्तमोत्तम अक्षरों से बनाई गई हो, फिर भी वे शब्दाक्षर एक निश्चित आकार की गढ़न में निबद्ध किए होते हैं। अगर हम रचनाकार द्वारा निर्मित इन गढ़नों का सूक्ष्म रूप में अध्ययन करें, तो हमें उसमें निहित सौंदर्य के दर्शन हो सकते हैं। यह धारणा गलत है कि त्रिताल की रचना केवल 16 मात्राओं की गढ़न में ही बंधी हुई होती है, क्योंकि अमुक रचना केवल अमुक मात्राओं की होती है। ऐसा विधान अत्यंत शिथिल विधान होगा। किसी भी रचना में जो शब्द प्रयोग किए होते हैं, वे विविध मात्रा कालों के होने के कारण ये विविध मात्रा काल उक्त रचना के खंड बनते हैं। कायदा, रचना के छोटे बड़े आकार होते हैं। चक्रधार तिहाई के भिन्न भिन्न आकार होते हैं। जातिबद्ध पर्णों के आकार अलग अलग होते हैं। छोटे मुहरों या मुखड़ों के आकार निराले होते हैं। इन रचनाओं में रचनाकार भिन्न भिन्न आकार के शब्द प्रयोगों से अलग अलग सौंदर्याकृति का निर्माण करता है। रचना में जिन शब्दों का प्रयोग किया होता है, वे सब एक ही गति के नहीं होते। अलग अलग गति के शब्द समूहों का प्रयोग इन रचनाओं में योजनापूर्वक किया होता है। कभी कोई रचना शुरू में धीमी गति में चलती है, तो आगे द्रुत गति में दौड़ती है, तो दूसरी रचना कभी अंत में द्रुत फिर धीमी गति में चलती है। ऐसी रचना बांधने में रचनाकार की कल्पना, शब्द स्मृति, शब्द योजकता तथा लय गुणितों का अंदाज काम में आता है। पृष्ठ संख्या 197। प्राचीन ताल और दश प्राण की संकल्पना। अध्याय में विविध यतिबद्ध रचना आकारों का परिचय यति संकल्पना विशद करते समय दिया गया है। एक और बात हमारे ध्यान में आ जाएगी कि मात्रा काल और उस मात्रा काल में प्रयुक्त जाति तीनों मिलकर रचना की गढ़न बनती है। केवल मात्रा कालों के जरिए शरीर की रचना का सही आकलन नहीं हो सकेगा। अतः उस रचना में कौन सी जाति का प्रयोग किया गया है, यह ज्ञात हो जाए तो उस रचना की काल्पनिक शरीर आकृति का आकलन होता है। किंतु जब उचित भाषा में वह जातिबद्ध रचना बांधी जाती है, तब उसमें प्राण निर्माण होता है। यदि वह रचना काव्यमय भाषा में निबद्ध की जाए, तो उसमें सौंदर्य निर्माण होता है। अर्थात जब वह रचना प्रभावपूर्ण निकास के जरिए प्रत्यक्षतः तबले पर प्रस्तुत की जाती है, तभी वह सर्वांग सुंदर रूप में श्रवण के माध्यम से हमें अपना दर्शन देती है। अर्थात रचना कृतियों का सौंदर्य मर्यादित स्वरूप का होता है। असली सौंदर्य तो उनमें प्रयुक्त भाषा और उनके कलात्मक प्रस्तुति में निहित रहता है। यहाँ हम काव्यमय भाषा सौंदर्य के बारे में और अधिक चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि तबला वादन एक छंदोबद्ध साहित्य शीर्षक अध्याय में उसके संबंध में विस्तृत ऊहापोह किया गया है। दूसरा, निकास एवं नाद सौंदर्य। तबले की पूरी पर केंद्र भाग में शास्त्रीय पद्धति में घोंट घोंट कर स्याही लगाई जाती है और पूरी को तबले पर समान तनावों से बांधा जाता है, जिससे तबला सुरीलेपन से मिलाया जा सकता है। शुद्ध स्वर निर्माण करने के तबले के इस गुण के कारण शास्त्रीय संगीत में उसका सक्षमता के साथ उपयोग किया जाता है। अच्छी तरह मिलाए गए तबले पर का ठेका प्रायः गायकों के लिए तालात्मक तानपुरे की भूमिका अदा करता है। तबले की स्याही तबले की पूरी के केंद्र भाग में लगी होती है, तो बाएं की स्याही थोड़ी सी हटकर एक तरफ लगी होती है। बाएं की पूरी का तनाव समान न होने से तथा उस पर लगी हुई स्याही केंद्र भाग में न होने से बाएं से निकलती हुई ध्वनि तबले से निकलने वाली ध्वनि जितनी सुरीली नहीं होती, किंतु कलाई के दबाव घिसाव से और उंगलियों के विविध ढंगों से बाएं से विविध छटाओं के घुमारे पैदा किए जा सकते हैं। पृष्ठ संख्या 198। ऐसी विविध प्रकार की ध्वनियां निर्माण करने की क्षमता के कारण तबला वादन की ध्वनियों में विविधता पैदा की जा सकती है, मिठास पैदा की जा सकती है, गमक का आभास पैदा करने वाले अक्षर निकाले जा सकते हैं। ठेका बजाते समय बाएं पर दबाव घिसाव की मदद से निकाली हुई ध्वनियों से ठेके में श्वास उच्छावास की क्रिया का आभास होता है, फलतः ठेका सजीव बनता है और दबाव घिसाव के तंत्र से ठेके की ताल की वर्तुलाकृति की अनुभूतियां भी श्रोताओं को प्राप्त होती हैं। अलग अलग उंगलियों से विभिन्न स्थानों पर विविध वजनों से जो नाद पैदा होते हैं, उन नादों के माधुर्य को जानकर या अनुभूत करके विचारवान वादक कलाकारों ने उंगलियों के लिए विविध क्रियाएं विकसित की। इन उंगलियों की निर्धारित क्रियाओं को निकास की संज्ञा प्रदान हुई। दाएं बाएं पर का निकास अलग सशक्त रूप में बजाए जाने वाले अक्षरों का निकास अलग, तो नजाकत के साथ किनार पर बजाए जाने वाले अक्षरों का निकास अलग। मंद गति से बजाए जाने वाले अक्षरों का निकास अलग, तो द्रुत गति से बजाए जाने वाले उन्हीं अक्षरों का निकास अलग। ऐसी विकसित निकास पद्धति को उचित नाद निर्मिति के लिए मार्गदर्शक के रूप में स्वीकृत किया गया। विभिन्न घरानों ने अपने प्रस्तुतिकरण के लिए विविध वादन प्रकारों को चुना तथा प्रस्तुतिकरण प्रभावी होने की दृष्टि से उन घरानों के वादक प्रमुख रूप से अपनी रचनाओं के अनुरूप निकास तंत्र का उपयोग करने लगे। इस निकास तंत्र के उपयोग के दौरान वह तंत्र पूर्णतः विकसित होता गया और उसे संबंधित घराने का वैशिष्ट्य माना जाने लगा। यह निकास तंत्र यानी शैली या बाज है। इस प्रकार प्रत्येक घराने का स्वतंत्र बाज पैदा हुआ। गणित सौंदर्य। तीसरा, कोई भी रचना निर्धारित मात्राओं के काल में ढांचे में निबद्ध की जाती है, किंतु मात्राओं की लंबाई के आधार पर हम जान सकते हैं कि सम पर आने के लिए उस रचना को हमें कहां से आरंभ करना चाहिए। यहां हम त्रिताल की तिहाई की कुछ रचना कृतियां देखेंगे। तिहाई, नमूना, मात्राकाल, विराम, मात्राकाल, विराम, मात्राकाल, कुल मात्राएं। अ, नमूना अ, मात्राकाल चार, विराम दो, मात्राकाल चार, विराम दो, मात्राकाल चार, कुल मात्राएं 16। नमूना ब, मात्राकाल पांच, विराम 1/2, मात्राकाल पांच, विराम 1/2, मात्राकाल पांच, कुल मात्राएं 16। नमूना क, मात्राकाल 15, विराम 1/1, मात्राकाल 15, विराम 1/1, मात्राकाल 15, कुल मात्राएं 48। नमूना ड, मात्राकाल 15/1, विराम 3/4, मात्राकाल 15/1, विराम 3/4, मात्राकाल 15/1, कुल मात्राएं 48। ऊपर त्रिताल की चार गणितीय आकृतियां हैं, पृष्ठ संख्या 199। इनमें से आकृति क और ड बजाने में बहुत ही मुश्किल है। उन्हें सक्षमता के साथ बजाने के लिए लय पर पक्का काबू होना चाहिए, तभी वे तिहाइयां सम पर आती हैं। अर्थात उपर्युक्त ढांचे में हम कौन सी शब्द प्रयोग करते हैं और उन्हें बिना लय को हिलाए कितनी सफाई के साथ बजा सकते हैं, उस पर उक्त तिहाई का सौंदर्य निर्भर रहता है, क्योंकि रचना मात्राओं के हिसाब में निबद्ध होती है। प्रस्तुतिकरण करते समय उसका प्रभावी ढंग से और अचूकता के साथ सम पर आना आवश्यक है, तथा ऐसा होने के लिए उसका कुछ निश्चित नियमों सूत्रों में निबद्ध होना जरूरी है। इसका सर्वप्रथम नियम यह है कि ऐसी रचना एक या अधिक गुणितों एवं जातियों में बंधी हुई हो। यहाँ गुणित से मतलब है एक गुना, डेढ़ गुना, दो गुना इत्यादि, और जाति यानी तिस्र, चतरस्र, मिश्र आदि पांच जातियाँ। मेरा यह विधान इसी संदर्भ में है। इसी का अर्थ यह है कि एकाध रचना चतरस्र जाति में बंधी हुई होंगी और उसका प्रयोग बंदिश में बराबरी या दुगुनी लय में हुआ होगा। लेकिन कुछ कलाकार इसी रचना का कलात्मकता से द्योढ़ी लय में प्रस्तुतिकरण प्रभावात्मकता से करते हैं। चौथा, सम और सौंदर्य। आवर्तन की पहली मात्रा का आरंभ बिंदु सम होता है, परंतु यह व्याख्या सम का केवल स्थान दर्शाती है। सर्वसाधारणतः संगीत के प्रस्तुतिकरण में बंदिश का मुखड़ा लेकर सम से आकर मिलना हर एक कलाकार का उद्देश्य होता है। पृष्ठ संख्या 200। आलाप, तान अथवा तानों की छोटी बड़ी आकृतियों को कलाकार अपने गायन या वादन में प्रस्तुत किया करता है। ऐसी आकृति को पूर्णतः इस ढंग से प्रस्तुत कर सकना चाहिए कि उसके पश्चात लिए हुए मुखड़े से कलाकार सहजता से, कल्पकता के साथ और आत्मविश्वास पूर्वक सम से आकर भिड़ जाए। इस दृष्टि से सम स्थान कलाकार के प्रस्तुतिकरण का केंद्र बिंदु तथा उत्कट आनंद बिंदु होता है। आवर्तन की सम प्रस्तुतिकरण की यात्रा में वर्तूलाकार गति से कलाकार से दूर जाती है और पुनः निकट आती है। दिशाहीन अवस्था में महासागर में रात को यात्रा करते समय नाविक का ध्यान ध्रुव तारा की ओर लगा रहता है। कुछ कुछ ध्रुव तारा की ही तरह का काम कलाकार के लिए सम करती है। अगर कलाकार सम स्थान के विषय में गाफिल रहा तो वह ठिठकते लड़खड़ाते हुए सम तक आ पहुंचता है, अथवा सम समझकर कभी कभी किसी दूसरे ही स्थान पर जा पहुंचता है। इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण अत्यंत निकृष्ट स्तर का और कलाहीन समझा जाता है, क्योंकि सम को कला प्रस्तुतिकरण का उत्कट बिंदु माना गया है। कलाकार जब ताल और लय पर प्रभुत्व पाकर अपनी कला को प्रस्तुत करता है, तब वह लय के साथ क्रीड़ा किया करता है। इस क्रीड़ा में योजनाबद्ध रीति से सम पर आकर श्रोताओं को अपेक्षा पूर्ति या अपेक्षा भंग का सुखद धक्का देते हुए वह श्रोताओं की ओर से दाद पाया करता है। सम पर आने से पूर्व की इस क्रिया को अनाघात और सम के बाद पहुंचने की क्रिया को अतीत की संज्ञा दी गई है। अनाघात या अतीत का अंतिम आघात कभी एक मात्रा का, कभी आधी मात्रा का, तो कभी पाव मात्रा का होता है। ऐसा माना जाता है कि अतीत या अनाघात बिंदु और प्रत्यक्ष सम का बिंदु, इनके बीच का अंतर जितना छोटा होता है उतनी ही कलाकार की लय पर की सामर्थ्य बड़ी होती है। लय पर प्रभुत्व रखने वाला ऐसा कलाकार अपने प्रस्तुतिकरण की यात्रा में ध्यानपूर्वक अथवा प्रतिक्षिप्त अवस्था में सम से संपर्क स्थापित किए रहता है। जिस प्रकार चील का ध्यान आकाश में फिरते हुए भी अपने पिल्लों की ओर ही केंद्रित रहता है, उसी प्रकार यह लयदार कलाकार लय की विविध जातियों एवं गुणितों के जरिए अपनी कला के प्रस्तुतिकरण के दौरान सम पर ध्यान केंद्रित किए रहता है। संगीत कला जिस समय कलाकार द्वारा प्रस्तुत होती है, उसी समय श्रोता द्वारा उसका रसास्वादन भी लिया जाता है और सम के बारे में भान, उत्सुकता एवं सम पर पहुंचने का आनंद कलाकार जितना ही श्रोता भी लिया करता है। जानकार श्रोता का आनंद कदाचित अधिक हो सकता है, फलतः सम आवर्तन का एक ऐसा स्थान है कि जो श्रोताओं का ध्यान सातत्य के साथ केंद्रित करता है। पृष्ठ संख्या 201 मन को आकर्षित करता है और उन्हें आनंद प्रदान करता है। सम हर आवर्तन में निश्चित स्थान पर आती ही है, किंतु प्रस्तुतिकरण में सम के बार बार आने पर भी उसका महत्व कम नहीं होता, बल्कि वह हमेशा सुंदर, आकर्षक और चैतन्यमय रहती है। कला के प्रस्तुतिकरण में रंग जमाने में सम का हिस्सा बहुत बड़ा होता है। ताल के आवर्तन में आने वाली प्रत्येक मात्रा सम की दिशा में मुख करके यात्रा किया करती है, इसीलिए ताल की अन्य मात्राओं को सम अभिमुख माना जाता है। सम अभिमुख त्रिताल का कल्पना चित्र नीचे दिया गया है। पृष्ठ संख्या 202 पांचवा, गतिमानता और सौंदर्य। मनुष्य अथवा मनुष्यत्तर प्राणियों के चलने, दौड़ने अथवा पक्षियों के उड़ने या वाहनों के चलने की क्रियाओं के माध्यम से हमें भिन्न भिन्न गतियों का दर्शन होता है। हिरण का विशिष्ट ढंग से चौकड़ी भरते हुए वेग के साथ दौड़ पड़ना या खरगोश का छलांगे भरते हुए दौड़ना बड़ा नाजुक और सुंदर होता है, तो अपना भक्ष्य पकड़ने के लिए शक्तिमान शेर का आवेशपूर्ण दौड़ना मर्दानी सौंदर्य का प्रखर दर्शन कराता है। इसके विपरीत हाथी की मंद गति की चाल का एक निराला ही सौंदर्य पैदा करती है। इन विविध गतियों को मध्यनजर रखकर विचार करने पर शुरू के पेशकार वादन के आरंभ में हाथी की मंद गति से किया गया प्रस्तुतिकरण अधिक प्रभावी होगा। मध्य गति से टप टप आवाज करते हुए डौलदार ढंग से दौड़ने वाले घोड़े की चाल कायदों की प्रस्तुतिकरण के लिए योग्य होती है। हंस के पंखों से पैदा होने वाले गतिमान वलय रेले के प्रस्तुतिकरण में लाए जाए तो एक अनोखे सौंदर्य की अनुभूति होती है। सुंदर स्त्री की चंचल एवं नाजुक चाल को जब लगी के प्रस्तुतिकरण में उपयोग में लाया जाता है तब हम एक निराले ही सौंदर्य की अनुभूति पा सकते हैं। गतिमानता संबद्ध हुआ करती है और कोई भी संबद्ध रचना सौंदर्य पैदा करती है। जब एकाध रचना अपनी गति बदलती है तब उस समय मन को सुखद एवं आश्चर्यान्वित करने वाला आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए दुपल्ली त्रिपल्ली रचनाएं अधिक प्रभावकारी होती हैं। एक ही गति में प्रस्तुत किए जाने वाले परन उस लय की पुनरावृत्ति से आनंद पैदा करते हैं, तो लय बदलने से श्रोता को अलग प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। छठवां है पढ़ंत और सौंदर्य। रचनाकार की प्रतिभा से जब एकाध बंदिश जन्म लेती है तब उस बंदिश का आकार, उसके शब्द, उन शब्दों में अभिप्रेत वजन के उतार चढ़ाव, विराम, बाएं से निकलने वाले उसके अपेक्षित ह्रस्व दीर्घ घुमारे और उस रचना में उसका अपेक्षित मृदु या कड़ा जोरदार भाव आदि बंदिश की सब विशेषताएं उनके मन में योजित होती हैं। पृष्ठ संख्या 203। रचना सिखाने के दो माध्यम होते हैं। पहला एक है प्रत्यक्ष बजाकर दिखाना और दूसरा मुंह से उच्चारण कर उस रचना को सिखाना। हम जानते हैं कि तबले की भाषा तबले पर निकलने वाली ध्वनियों की नकल करने वाले अक्षरों से बनी हुई होती है और इसीलिए हम जब तबले की रचना मुंह से उच्चारित करते हैं तब उससे निकलने वाली ध्वनियों को तबले पर निकालने का प्रयत्न हुआ करता है। इसीलिए तबले की रचना को मुंह से बोलकर सिखाने की पद्धति परंपरा भी चालू है। मनुष्य कोई भी शिक्षा मस्तिष्क द्वारा ग्रहण करता है। जिस ज्ञान को आँखों से पढ़कर मस्तिष्क ग्रहण करता है उसे वह अन्य अवयवों के द्वारा उपयोग में लाता है। कान से सुने हुए शब्दों को मस्तिष्क मुंह से दोहराता है। सुने हुए ऐसे शब्दों का जितना गहरा ग्रहण मस्तिष्क करता है उतना गहरा उच्चारण मस्तिष्क मुंह के द्वारा कर सकता है। तबले के बारे में कहना हो तो एकाध रचना की शुरू में बताई गई सभी बारीकियां अगर मस्तिष्क ने ग्रहण की हो तो वे मुंह के द्वारा व्यक्त की जा सकती हैं। इन बारीकियों सहित एकाध रचना बार बार कही जाए तो वे सब बारीकियां मस्तिष्क में पक्केपन के साथ स्मरण में रहती हैं। फलतः जब ऐसी रचना बार बार मुंह से कही जाती है या बताई जाती है तब मस्तिष्क उस रचना को उस सूक्ष्म भेदों के साथ अनेक बार बजाने की आज्ञा दिया करता है और रियाज के माध्यम से अनेक बार उसे बजाने से वह उन बारीकियों सहित कुशलता से बजने लगती हैं। तबले के विषय में एक कहावत प्रचलित है, जिनकी जबान साफ उनका हाथ साफ। कहावत का मतलब यही है कि अपनी शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क है। तबले के शब्दों का उच्चारण जीभ के लिए एक कसरत का खेल भी हुआ करता है। संस्कृत वाणी से जिस प्रकार उच्चारण सुधर कर शुद्ध होता है वही परिणाम तबले की रचना अस्पष्ट होने की दृष्टि से तबले के बोल बोलने की क्रिया द्वारा साध्य किया जा सकता है। कुछ तबला वादक इन रचनाओं को जितनी सुंदर रीति से बजाया करते थे उतने ही सुंदर ढंग से खोलकर उन्हें मुंह से व्यक्त किया करते थे। उनके इस कौशल से प्रभावित जानकार श्रोता उन्हें महफिल में बोल मुंह से बोलने की सिफारिश करते थे। फलतः श्रोताओं को एक एक रचना दो दो बार सुनने को मिलने लगी और उससे उन रचनाओं का सौंदर्य उनकी समझ में अधिक अच्छी तरह आने लगा। धीरे धीरे तबला वादक सोलो वादन के दौरान नियमित रूप में कुछ सुंदर रचनाएं पढ़ंत के जरिए पेश करने लगे। इस तरह से पढ़ंत की परंपरा शुरू हो गई। पृष्ठ संख्या 204। कोई भी व्यक्ति अपने विचार या भाव वाणी के द्वारा व्यक्त करता है ही, लेकिन वाणी के अलावा आँखें, भ्रिकुटी, गर्दन, हाथ इत्यादि कायिक अंगों से भी उन्हें व्यक्त किया करता है। मनोवैज्ञानिकों की राय में भाषा के माध्यम से विचार अभिव्यक्ति की परिणाम कारकता 30-40% साध्य हो सकती है, जबकि उपर्युक्त कायिक अंग विक्षेपों की परिणाम कारकता 60-70% होती है। जब तबला वादक मुंह से रचना पेश करता है तब उसके हाथ मुक्त रह जाते हैं। फलतः जिस वादक कलाकार के पास सौंदर्य दृष्टि हो और जिसने रचनाओं को बारीकियों के साथ समझ लिया है उसकी पढ़ंत से दर्शक श्रोताओं को निम्नांकित दृष्टि से रचनाओं की असली पहचान हो जाती है। पहला, ध्वनियों के बड़े छोटेपन पिच एंड इंटेंसिटी से महत्वपूर्ण शब्दों का प्रदर्शन। दूसरा, सांस रोकने के तंत्र से नाद के उतार चढ़ाव से महत्वपूर्ण शब्दों की तीव्रता घनना का नाट्यपूर्ण प्रदर्शन। तीसरा, आंखें, भ्रिकुटी और गर्दन की हालचाल से रचना की बारीकियां का परिचय। चौथा, हाथों से ताल, ताली, खाली और मात्राओं की क्रियाएं बताकर रचना की आकृति का कलात्मक विश्लेषण। पांचवा, शुद्ध वाणी द्वारा रचना का शुद्ध रूप में प्रदर्शन। फलतः वह रचना एक प्रकार से सजीव बनकर साकार हो जाती है और श्रोता इस पढ़ंत की ही दाद देते हैं। सर्व साधारणतः गत टुकड़ों की रचनाएं पढ़ंत द्वारा प्रस्तुत करने की प्रथा है। सातवां, तबले से रस निर्मिति। अपनी कला के द्वारा विविध रसों की कलात्मक निर्मिति हो, यह हर एक कलाकार की आकांक्षा एवं लक्ष्य होता है और विविध ललित कलाओं के कलाकार अपनी अपनी पद्धति से रस निर्मिति करने में प्रयत्नशील रहते हैं। साहित्य और संगीत दोनों ललित कलाएं हैं, दोनों का अटूट नाता है। साहित्य की अभिव्यक्ति का माध्यम शब्द है और शब्द संपत्ति अर्थात भाषा का विकास पूर्णतः होने के कारण साहित्यकार के लिए मन के भाव व्यक्त करना तुलनात्मक दृष्टि से अत्यंत आसान होता है। पृष्ठ संख्या 205। संगीत के विषय में कहना हो तो गायक कलाकार शब्द, स्वर, लय तथा तबले पर अथवा अन्य तालवादियों पर निकलने वाली विविध ध्वनियों की सहायता से मन के भाव व्यक्त कर सकता है, किंतु रसिकों के लिए संगीत के माध्यम से की गई इस अभिव्यक्ति का आकलन साहित्य की अभिव्यक्ति की तुलना में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि रसिकों को उसके लिए अपनी कल्पना शक्ति को विशेष तानना पड़ता है। संगीतकार का अपनी कला के प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य यह होता है कि वह अपने मन का भाव श्रोताओं तक पहुंचा दे। नृत्यकार जब तांडव नृत्य प्रस्तुत करता है तब उसकी अपेक्षा यह होती है कि नृत्य से वीर रस और रौद्र रस पैदा हो। संध्या काल के राग के माध्यम से कलाकार बेचैनी, दया के भाव अथवा कोई गंभीर वातावरण पैदा करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। ठुमरी सुनते समय श्रृंगार जैसे रस की निर्मिति हो, यह श्रोताओं की स्वाभाविक अपेक्षा होती है। ताल का ठेका, ठेका भरी, ताल वाद्यों का चुनाव, वादन शैली, वादन प्रकार आदि का योजनाबद्ध रूप में उपयोग संगीत में अपेक्षित भावों को प्रभावात्मक ढंग से व्यक्त करने में सहायक होता है। विभिन्न ताल, उनके ठेके, उनमें आए हुए शब्द, अक्षर, विविध प्रकार की लय और अक्षरों को बजाने का निकास आदि के कारण विविध रस निर्मिति के प्रयोग को सहायता पहुंचती है। इसकी स्पष्टीकरण नीचे दिए हुए तख्ते में संक्षेप में बताया गया है। ताल का नाम या वादन प्रकार, प्रकृति और किस रस की अभिव्यक्ति होती है। पहला, कहरवा, दादरा, झपताल, दीपचंदी, त्रिताल, रूपक, एकताल, अद्धा। इसकी प्रकृति चंचल होती है एवं इससे श्रृंगार, करुण, भक्ति, कुछ तज्जियों की राय में हास्य और वात्सल्य रस भी पैदा हो सकता है। दूसरा, चौताल, धमार, सुलफाक, ताल, तेवरा, तिलवाड़ा, झूमरा। इसकी प्रकृति गंभीर होती है एवं शांत और करुण रस की अभिव्यक्ति होती है। तीसरा है रुद्रताल, मत्ताल। इसकी प्रकृति गंभीर होती है एवं वीर रस और रौद्र रस की अभिव्यक्ति होती है। चौथा है पेशकार। इसकी प्रकृति गंभीर होती है एवं शांत रस की अभिव्यक्ति होती है। पृष्ठ संख्या 206। कायदा, रेला, लग्गी, लड़ी। इसकी प्रकृति चपल होती है एवं श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति होती है। गत, टुकड़े, परन इत्यादि। इसकी प्रकृति गंभीर होती है एवं शांत और वीर रस की अभिव्यक्ति होती है। सातवां है थाप, खुला बाज। इसकी प्रकृति चपल होती है। इसमें वीर रस, रौद्र रस और शांत रस की अभिव्यक्ति होती है। आठवां है चाट पर के अक्षर। इसकी प्रकृति चपल होती है। इसमें श्रृंगार एवं करुण रस की अभिव्यक्ति होती है। धीमी लय। इसकी प्रकृति गंभीर होती है एवं शांत रस की अभिव्यक्ति होती है। द्रुत लय। इसकी प्रकृति चपल होती है एवं श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति होती है। खर्ज के स्वर। इसकी प्रकृति गंभीर होती है, इससे वीर रस एवं शांत रस की अभिव्यक्ति होती है। तार स्वर। इसकी प्रकृति चपल होती है, इससे श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति होती है। टीप का तबला। अभिनय एवं साहित्य भाषा के जरिए भाव निर्मिति सहजतया एवं अत्यंत प्रभावात्मकता के साथ की जा सकती है। केवल तबले के माध्यम से श्रृंगार, करुण, शांत, वीर और भक्ति रस प्रभावी रूप में निर्माण करना अत्यंत कठिन है। इसीलिए गायन एवं अभिनय के प्रस्तुतिकरण में उचित तबले के साथ संगत से अपेक्षित भाव अधिक प्रभावात्मकता के साथ अभिव्यक्त हुआ करता है। यहाँ ललित कलाओं का संगम हुआ होता है, वहाँ भाव प्रकटीकरण अधिक प्रभावी होना नितांत स्वाभाविक है। तबले के जरिए रस निर्मिति सहायक रूप में ही मददगार सिद्ध होती है।